रजनीश कुमार यादव के आवाज में छायावादी कवि पंत के ऊपर आलोचनात्मक प्रश्नों के उत्तर को सुनिए। पंत की प्रारंभिक कृतियों को लेकर उनकी नवीनतम रचनाओं के आधार पर छायावादी और प्रगतिवादी पंत की आलोचना कीजिए या पंत के काव्य विकास की विभिन्न स्थितियों की विशेषताओं का विश्लेषण कीजिए। उत्तर: कवियर सुमित्रा नंदन पंत विकासशील कवि माने जाते हैं और उन्होंने अपने काव्य संग्रह उत्तरा की भूमिका के पृष्ठ 2 में स्वयं ही स्वीकार किया है। लेखक एक सजीव अस्तित्व या चेतना है और वह भिन्न भिन्न समय पर अपने युग के स्पर्शों तथा संवेदनों से किस प्रकार आंदोलित होता है, उन्हें किस रूप में ग्रहण करता है तथा प्रदान करता है, इनका निर्णय ही उसके व्यक्तित्व पर प्रकाश डालने में अधिक उपयोगी है। इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि पंत जी समय समय पर न केवल युगों के स्पर्शों से आंदोलित होते रहते हैं अपितु उन युग स्पर्शों को भी ग्रहण करते हैं, अतः स्वाभाविक ही उनकी विचारधारा में विविधता विद्यमान है। यूं तो श्रीमती सच्ची रानी गुरटू ने पंत जी की समग्र काव्यकला को प्रधानतः इस प्रकार विभाजित किया है। पहला, प्रारंभ में वीणा से गुंजन तक उनकी कविता का मूल भाव प्रकृति प्रेम एवं केंद्रित उल्लास है, जिसमें वस्तु सत्य के साथ आत्म सत्य के समन्वय का प्रयास है। दूसरा, गुंजन के बाद युगवाणी और ग्राम्या तक कवि की अनुभूति का और जिज्ञासा वृत्ति अधिक सजग और सचेत हो उठी है। उसके भावनमाद का अब प्रावण विकास हुआ है और उनकी चिंतन सरणी भाव जगत में बैठने की अपेक्षा वस्तु जगत में अधिक खुलकर विचरण करती है। तीसरा, स्वर्ण ध्वनि में कवि का सूक्ष्म चेतन मन मार्क्सवादी भौतिक संघर्षों से उपकर आध्यात्मवाद की ओर मुड़ा है। चौथा, युगपथ उत्तरा आदि उनकी इतर कृतियों में आत्मनुक मनोभूमि अर्थात उनके अवचेतन मन के साथ ऊर्ध्वमुखी वृत्तियों का समाहार है, जहां उनकी अंतर्भेदनी दृष्टि स्थूल तथ्यों पर उतरती हुई सूक्ष्म तथ्यों पर रम गई है। इस विभाजन को ध्यान में रखते हुए हम पंत जी की विचारधारा पर विचार करने बैठते हैं, तब यह स्पष्ट हो जाता है कि रोमांटिक काव्यधारा के प्रवर्तक होते हुए भी उनकी काव्य रचनाओं में कविता का विकास क्रम विभिन्न प्रवृत्तियों भावों और विचारों की भूमिका स्पर्श करता हुआ प्रवाहित होता है। संभवतः यही कारण है कि उनकी विचारधारा भी निम्नांकित निम्न 3 भागों में विभाजित की जा सकती है: छायावादी और रहस्यवादी, प्रगतिवादी, आध्यात्मवादी। यहाँ यह भी स्मरण रखना चाहिए कि पंत की विचारधारा व कवित्व का यह कोई वैज्ञानिक विभाजन नहीं है और न इसका अभिप्राय यह है कि किसी एक युग में कवि की एक ही विचारधारा रही है, अपितु इसके केवल मात्र पंत की विचार सारणी के अध्ययन में सुविधा मिलती है। अब हम यहाँ पंत की छायावादी और प्रगतिवादी विचारधारा का संक्षिप्त मूल्यांकन करेंगे। छायावादी विचारधारा: वस्तुतः पंत की प्रारंभिक काव्य कृतियों में इसी की प्रधानता देख पड़ती है और वीणा के युगांत तक की रचनाओं में यही विचारधारा विद्यमान है। यूं तो श्री विश्वंभर मानव का विचार है कि जहाँ तक छायावाद का संबंध है, वहाँ अब तक कवियों के प्रकृति को अपने दृष्टिकोण से देखा था। पंत ने उसे निरपेक्ष दृष्टि से देखा, अब तक उसे चेतन माना, अब तक उसे किसी न किसी प्रकार मानव जीवन से संबंध करके रखा गया था। पंत ने उसके जीवन को अपने में पूर्ण और स्वतंत्र घोषित किया। प्रकृति के प्रति वह अभिनव दृष्टिकोण 20वीं शताब्दी की ही विशेषता है और इस संबंध में दो मत नहीं कि प्रकृति के इस मुक्ति में पंत का सबसे बड़ा हाथ है। पर जहाँ तक रहस्यवाद का संबंध है, वहाँ पंत का काव्य रहस्य भावना के विकास की ही नहीं रास की कहानी है। प्रारंभ में उनकी सुकुमार वृत्ति जिस सौंदर्य प्रेम के कारण अनंत का चिंतन करने में लीन रही, बाद में वही अन्य विषयों की ओर मुड़ी। इस प्रकार बीड़ा से युगांत तक की रचनाओं में सौंदर्य भावनाओं की ही प्रधानता है तथा कवि की प्रकृति में सजीव सत्ता धारण किए हुए खेल रही दिख पड़ती है। उस अकेली हरियाली में कौन अकेली खेल रही माँ, वह अपनी वय वाली में सजा हृदय की थाली में क्रोड़ा कौतूहल कोमलता मोद मधुरिमा हास विलास लीला विष में आतुरता भय स्नेह पुलक मुख सरल हुलास उषा के मृदु लाली में। प्रगतिवादी विचारधारा। यों तो युगांत में ही कवि ने राजनीतिक विचारधारा को प्रसरण दिया और वह उस कृति में गांधीवाद से भी प्रभावित जान पड़ता है, लेकिन भारतीय स्वतंत्र आंदोलन को और भी अधिक तीव्र गति से चलाने के लिए विभिन्न राजनीतिक दलों की भी स्थापना हुई तथा रूस से होने वाली समाजवादी क्रांति से प्रभावित हो भारतीय नवयुवकों ने भी समाजवादी दल स्थापित किया। इस समाजवादी विचारधारा में भी दो वर्ग थे, जिनमें से प्रथम में क्रांति के लिए हिंसा और अहिंसा सभी कुछ उपयुक्त समझा जाता, द्वितीय में शोषण की समाप्ति हेतु शोषक वर्ग की सत्ता में सक्रिय विद्रोह अनिवार्य माना गया था। पंत जी के संबंध में यह बात उल्लेखनीय है कि वे प्रारंभ से ही प्रगति के समर्थक रहे हैं, जीवन संघर्ष से भागने की प्रवृत्ति उन पर अधिकार न कर सकी। पल्लव में भी उन्होंने परिवर्तन का स्वागत किया है और गुंजन में उनके विदग्ध हृदय की भावुकता और कोमल कल्पना लय आत्मचिंतन और लोक कल्याण की भावना में हो गया, परंतु पंत जी की प्रगतिवादी विचारधारा युगवाणी और ग्राम्या में ही विशेष रूप से दिखाई पड़ती है, अतः इन्हीं के आधार पर हम उनके प्रगतिशील विचार का अध्ययन करेंगे। वस्तुतः युगवाणी में कवि की चेतना परिपक्व हो गई और आत्मचिंतन एवं कठोर अंतर्द्वंद के पश्चात उसे मानव विकास का एक नूतन मार्ग मिल गया तथा साथ ही अब उसे कविता के बंधन टूटते हुए दिख पड़ते हैं। खुल गए छंद के बंध, प्राण के रजत पास, अब गीत मुक्त औ युगवाणी बहती अयास। कदाचित इसलिए कवि का विचार है कि प्राचीन मूल्यों के विकृत हुए बिना जगत का कल्याण संभव नहीं और वह रूढ़िवादिता का खंडन कर जगत के जीर्ण शीर्ण पत्रों को ध्वस्त होता हुआ देखना चाहता है। युगवाणी में मार्क्सवादी विचारधारा की प्रधानता है और कवि ने मार्क्स के प्रतिरचना में मार्क्स को प्रलयवादी शिव का तृतीय ज्ञान चक्षु बतलाया है। इतना ही नहीं, अपने रचनाओं में मार्क्सवादी दर्शन की स्पष्ट छाप है तथा साम्यवादियों के अनुकूल ही पंत जी ने भी संसार इतिहास और समाज की व्याख्या की है। ग्राम्या में तो यथार्थवाद का पुट और भी अधिक गहरा हो गया है तथा केवल बौद्धिक सहानुभूति प्रदान करने की घोषणा करते हुए कवि ने गांव के व्यापक जीवन पर दृष्टि फेरी है और जहां की एक ओर धोबियों, कहारों, चमारों आदि के नृत्य ग्राम श्री ग्राम युवती आदि का वर्णन किया है, वहां दूसरी ओर उन्होंने धूल से खेलते हुए बच्चों को विदा होती बहन बेटियों और पीतल के गहने लादे किसानों की पत्नियों को नहाने के लिए जाते हुए देखा है। ग्राम्य जीवन की यह झलक भी कवि ने पूर्णतः यथार्थवादी दृष्टिकोण से अंकित की है। यहाँ धरा का मुख्य कुरूप है, कुत्सित गर्हित जन का जीवन, सुंदरता का मूल्य वहाँ क्या जहाँ उधर है क्षुब्ध नयनतन। पंत जी की प्रतिभा उत्तर-उत्तर विकास उन्मुखी रही है और उनकी विचारधारा भी प्रवण होती गई तथा प्रकाशन की तिथि के क्रमानुसार उनकी समस्त रचनाओं की तालिका सुपरिचित कवि बच्चन ने एक स्थान पर इस प्रकार प्रस्तुत की है। उच्छ्वास 1922 में, पल्लव 1926 में, वीड़ा 1927 में, ग्रंथी 1929 में, गुंजन 1932 में, ज्योत्सना 1949 में, युगांत 1936 में। उक्त कृतियों के साथ ही सन 1960 में पंत जी का उपन्यास हार भी प्रकाशित हुआ जो अभी तक अप्रकाशित था और इधर मई 1961 में उनके काव्य संकलनों की प्रस्तावनाओं, आकाशवाणी से प्रसारित वार्ताओं, अभिभाषणों व पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित निबंधों का संग्रह शिल्प और दर्शन नाम से प्रकाशित हुआ। इस शिल्प और दर्शन में पंत जी ने गद्य पथ निबंध संग्रह की सामग्री भी सम्मिलित कर दी। इस प्रकार पंत जी उदात्त मानवता और विश्व मंगल का स्वप्न अपनी अंतिम कविताओं में देखते हुए 28 दिसंबर 1977 की मध्य रात्रि को चिर निद्रा में सो गए। पंत जी के ऊपर अगला प्रश्न इस प्रकार से है, पंत के प्रकृति चित्रण का निरूपण कीजिए, या पंत प्रकृति के कोमल सुकुमार कवि हैं, सो उदाहरण इस मत को स्पष्ट कीजिए। उत्तर, पंत जी और प्रकृति। पंत जी प्रकृति के सुकुमार कवि हैं। प्रकृति की उनकी कवि प्रेरणा का स्रोत है। बचपन से ही पंत का प्रकृति से घनिष्ठ संबंध रहा, वह उनके हृदय में आत्मसात हो गई। पंत ने प्रकृति को अपनी काव्य प्रेरणा रूप में स्वीकार किया है। कविता करने की प्रेरणा मुझे सबसे पहले प्रकृति से ही मिली है, जिसका श्रेय मेरी जन्मभूमि कुर्मांचल प्रदेश को है। कवि जीवन के पहले भी मुझे याद है, मैं घंटों एकांत में बैठा प्रकृति के दृश्यों को एकटक देखा करता था और कोई अज्ञात आकर्षण मेरे भीतर एक अव्यक्त सौंदर्य का जाल बुनकर मेरी चेतना को तन्मय कर देता था। जब कभी मैं आंख मूंद कर लेटता था, वह दृश्यपट चुपचाप मेरी आंखों के सामने घुमा करता था। पंत जी के काव्य में प्रकृति चित्रण निम्नलिखित रूपों में हुआ है। पहला आलंबन रूप में प्रकृति चित्रण, दूसरा उद्दीपन रूप में प्रकृति चित्रण, तीसरा अलंकार रूप में प्रकृति चित्रण, चौथा पृष्ठभूमि के रूप में प्रकृति चित्रण, पांचवा रहस्य संकेत के रूप में प्रकृति चित्रण, छठा दार्शनिक तथ्यों के रूप में प्रकृति चित्रण, सातवां मानवीकरण के रूप में प्रकृति चित्रण, आठवां प्रस्तुत अप्रस्तुत रूप में प्रकृति चित्रण, संवेदनात्मक रूप में प्रकृति चित्रण, दसवां वातावरण निर्माण के रूप में प्रकृति चित्रण, ग्यारहवां प्रतीकात्मक रूप में प्रकृति चित्रण, बारहवां उपदेशात्मक रूप में प्रकृति चित्रण, तेरहवां द्वितीय रूप में प्रकृति चित्रण, जिनमें से हम प्रमुख प्रकृति चित्रणों पर अध्ययन करेंगे। आलंबन के रूप में प्रकृति चित्रण। प्रकृति का आलंबन रूप का चित्रण दो प्रकार से होता है। एक तो प्रकृति के संश्लिष्ट एवं भव्य चित्र अंकित किए जाते हैं, जिनमें प्रकृति अलौकिक रमणीयता के साथ अपने पूर्ण एवं समग्र रूप से अंकित अपितु प्रकृति के पदार्थों के नाम भर दिए जाते हैं। इसे नाम परिग्रहण प्रणाली का प्रकृति चित्रण कहते हैं। पंत जी ने नाम परिग्रहण शैली में भी प्रकृति वर्णन किया है, किंतु प्रकृति के आलंबन रूप में संश्लिष्ट चित्र ही अधिक अंकित हुए हैं। बादल, आंसू, बसंत, परिवर्तन, गुंजन, एक तारा, नौका विहार आदि कविताओं में प्रकृति के बड़े ही अनूठे चित्र सामने आए हैं। ग्राम्या में प्रकृति ने निम्न तरीके से प्रकृति का चित्रण किया है। महके कटहल, मुकुलित जामुन, जंगल में झरबेरी फूली, फूले आड़ू, नींबू, दाड़िम, आलू, गोभी, बैगन, मूली। उद्दीपन रूप में प्रकृति चित्रण। उद्दीपन रूप में प्रकृति चित्रण में प्रकृति मानवीय भावनाओं को उद्दीप्त करती हुई चित्रित की जाती है। प्रकृति संयोग सुख और दुख दोनों ही स्थितियों में मानवीय भावनाओं को उद्दीप्त करती है। निम्न उदाहरण में प्रकृति सुषमा संयोग के भावों को उद्दीप्त कर रही है। डोलने लगी मधुर मधुवात, हिला तृण वृंत कुंज तरुपात, डोलने लगी प्रिय मृदुबात, गूंज मधु गंध फूल हिमपात, खोलने लगी सहित चिरकाल, नवल कवि अलस पलक दल जाल, बोलने लगी डाल से डाल। वियोग के क्षणों में प्रकृति वियोगी के हृदय को अधिक व्याकुल बना देती है। ग्रंथि उच्छ्वास, आंसू, परिवर्तन आदि कविताओं में प्रकृति वर्णन का यह रूप देखा जा सकता है। निम्न उदाहरण में उपवन को अपने प्याले में मधुकर को यौवन पिलाते देखकर तथा लहर को प्रसूनों के समीप तनिक रुक कर और फिर झट सरकते देखकर कवि व्यग्र हो उठता है। देखता हूँ जब उपवन प्यालियों में फूलों के प्रिय भर भर अपना यौवन पिलाता है मधुकर को। अलंकार के रूप में प्रकृति चित्रण। पंत जी ने विविध अलंकारों की योजना के लिए प्रकृति के से ऊपर उपकरणों को चुना है। निम्न उदाहरण में प्रकृति से उपमान जुटाकर अभिव्यक्त की गई है। मेरा पावस ऋतु सा जीवन, मानस सा उमड़ा अपार मन, गहरे धुधले घुले सांवले, मेघों से मेरे भरे नयन। रहस्यात्मक संकेत के रूप में प्रकृति चित्रण। पंत जी प्रकृति को अव्यक्त सत्ता के रूप में देखते हैं। वह उन्हें कभी नक्षत्र के रूप में मौन निमंत्रण देती है, तो कभी लहरों के रूप में हाथ उठाकर अपनी ओर बुलाती हैं, और कभी उद्योगों के रूप में पथ दिखलाती हैं, और कभी वह उसके स्वप्नों में आकर छाया जगत में विचरण करती हैं। पंत जी के हृदय में अभिव्यक्त सत्ता के प्रति जिज्ञासा जागृत होती है। परंतु उनको यह पता नहीं चल पाता कि अव्यक्त सत्ता कौन है। निम्न उदाहरण में प्रकृति का निखरा हुआ रहस्यात्मक रूप मिलता है। सघन मेघों का भीमाकाश गरजता है जब तमसाकार, दीर्घ भरता समीर निश्वास, प्रखर झरती जब पावस धार। दार्शनिक तथ्यों की उद्भावना के रूप में प्रकृति चित्रण। पंत जी की कई ऐसी कविताएं हैं जिनका प्रकृति चित्रण उपनिषदों के दर्शन से प्रभावित है। नौका विहार शीर्षक कविताओं में इसी प्रकार प्रकृति चित्रण हुआ है। जगमग जगमग नभ का आंगन, लद गया कुंद कलियों से धन, वह आत्मा और यह जग दर्शन। मानवीकरण के रूप में प्रकृति चित्रण। नीचे नभ के सतदल पर वह बैठी सारद हासिनी, मृदु करतल पर शशि मुख धर नीरव अनिमिष एकाकिनी, वह स्वप्न जड़ित नत चितवन छू लेती अगजग का मन, श्यामल कोमल चल चितवन जो लहराती जग जीवन। पंत जी की छाया, बादल, मधुकरी, संध्या, सांध्य तारा, नौका विहार, चांदनी आदि कविताएं मानवीकरण के रूप में प्रकृति चित्रण की सुंदर उदाहरण है। ग्रीष्म की गंगा के निम्न चित्र में मानवीय भाव, आकार, चेष्टा, व्यापार और साज सज्जा का इतना सजीव वर्णन हुआ है कि वह सजीव तापस पाला ही लगने लगती है। सहकत सैया पर दुग्ध धवल तनवंगी गंगा ग्रीष्म विरल, लेटी है श्रांत क्लांत निश्चल तापस बाला गंगा निर्मल, शशिमुख से दीपति मृदु करतल लहरें ऊपर कोमल कुंतल। दूती के रूप में प्रकृति चित्रण। काव्य में प्रकृति को दूती या दूत के रूप में प्रस्तुत करने की परंपरा रही है। कालिदास का मेघदूत और हरि अवध के प्रिय प्रवास की पवन दूती इस प्रकार के वर्णन के अन्यतम उदाहरण हैं। प्रकृति वर्णन के इस रूप को छाया बादल की निम्न पंक्तियों में देखी जा सकती है। सुरपत के हम ही हैं अनुचर, जगत प्राण के भी सहचर, मेघदूत की सजल कल्पना चातक के चिर जीवन धार। लोक शिक्षा के रूप में प्रकृति चित्रण। काव्य में प्रकृति का उपभोग उपदेशात्मक रूप में भी हुआ है। पंत जी की परिवर्तन शीर्षक कविता में सर्वाधिक लोक शिक्षा समाहित है। पतझर शीर्षक कविता में पुराने पत्तों के निरंतर झरने तथा नूतन किसलयों के आगमन की बात कहकर संसार के चिर आवागमन का अथवा आत्मा की अमरता का सुंदर संदेश दिया गया है। झरो झरो जग जग अंगड़ में, जीवन संघर्षण में, नवयुग परिवर्तन में, मन के पीले पत्तों झरो झरो। प्रतीकात्मक रूप में चरित्रण। आधुनिक युग में प्रकृति का सर्वाधिक प्रयोग प्रतीकों के रूप में हुआ है। पंत जी की कविता परिवर्तन शीर्षक कविता में अनेक प्रतीक आए हैं। निम्न उदाहरणों में सुकुमार वात हता लतिका को एक सुकुमार नवयुवती का प्रतीक बनाकर सुंदर चित्र प्रस्तुत किया गया है। अभी तो मुकुट बधा था मात, वे कलई हल्दी के हाथ, खुले भी न थे लाज के बोल, खुले भी चुंबन शून्य कपोल, हाय रुक गया वही संसार, बना सिंधुर अंगार, बात हत तलिका वह सुकुमार, पड़ी है छिन्नाधार। पंत जी प्रकृति के अन्यतम कवि हैं। उन्होंने प्रकृति के प्रायः सुकुमार और कोमल चित्र अंकित किए थे। पंत जी के ऊपर अगला प्रश्न इस प्रकार से है। छायावादी कविता की विशेषताओं की विवेचना करते हुए पंत जी के महत्वपूर्ण योगदान का उल्लेख कीजिए। छायावादी काव्य का स्वरूप और विशेषताएं इस प्रकार हैं। पहला, छायावाद में आध्यात्मिकता होती है। दूसरा, यह एक प्रवृत्ति विशेष है। तीसरा, छायावाद प्रकृति से मानवीकरण है। चौथा, छायावाद में एक दार्शनिक अनुभूति है। पांचवा, वह एक गीत काव्य है जिसमें प्रेम और सौंदर्य का अंकन होता है। छठवा, इसमें स्वानुभूति का ध्वन्यात्मक, लाक्षणिक या उपचार वक्रतामयी प्रतीकात्मक शैली में अभिव्यक्तिकरण होता है। सातवा, इसमें युगानुरूप वेदना की निवृत्ति होती है और यह एक सांस्कृतिक चेतना का परिणाम है। आठवा, इसमें आधुनिक औद्योगिकता से प्रेरित व्यक्तिवाद है जिसमें वैयक्तिक चिंतन और अनुभूति का प्रधान है तथा इसमें मानवीय जीवन के 9 मूल्यों का अंकन है। 9वां, यह एक थोथी नैतिकता रूढ़िवादी और सामंती साम्राज्यवादी बंधनों के प्रति अंकन है। 10वां, इसका मूल आधार सर्वात्मवाद है। पंत और छायावाद। पंत जी छायावाद के प्रथम उन्नायकों में से हैं और उन्होंने अपने पल्लव तथा गुंजन शीर्षक काव्यों में छायावाद के सूक्ष्म सौंदर्य चेतना का सफल समावेश किया है। छायावाद के प्राकृतिक चित्रों में कवि की अपनी भावनाओं की छाया रहती है और कवि की भावनाओं में प्रकृति सौंदर्य की छाया का अस्तित्व रहता है। उदाहरण के लिए गुंजन में उनकी कविता की भावाभिव्यक्ति देखिए। खोल खोल कलियों ने उर के द्वार, दे दिया उनको कवि का देश। बजा भौरों ने मधु का तार, कह दिए भेद भरे संदेश। पंत जी के काव्य में छायावादी भावनाओं और छायावादी कला का सफल समावेश हुआ है। इस प्रकार छायावादी काव्यधारा में पंत जी का विशिष्ट स्थान है और उनकी वीणा, पल्लव, ग्रंथि, गुंजन आदि कृतियां छायावादी काव्य के अंतर्गत ही हैं। साथ ही जिस प्रकार श्री जयशंकर प्रसाद को छायावाद के उद्भव और विकास का श्रेय दिया जाता है, उसी प्रकार पंत को उसे लोकप्रिय बनाने का श्रेय है। डॉक्टर इंद्रनाथ मदान का तो यही कहना है, छायावादी कविता को जिन कवियों ने आगे बढ़ाया उनमें पंत जी का प्रमुख स्थान है। यूं तो छायावाद का प्रारंभ जयशंकर प्रसाद जी के झरना काव्य संग्रह से माना जाता है और वही इसके परिवर्तक कहे जाते हैं, लेकिन पंत जी ने छायावाद की कला को सबसे अधिक निखारा। यहाँ पर पंत जी के ऊपर प्रश्नोत्तर समाप्त होता है।